Welcome to Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ अमन अग्रवाल जी. अमन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
नमस्कार.
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अर्जुन.
डोमेस्टिक स्टॉक इंडिसीज इन फ्लैट. सेंसेक्स क्लोजेज एट 80,050. निफ्टी सेटल्स एट 24,302. Sensex crossing 80,000 points is an ecstatic moment, says Chief Justice of India, D.Y. Chandrachur. And stockbrokers to establish institutional mechanism for prevention and detection of fraud or market abuse, directs SEBI circular.
घरेलू शेयर बाजार सपाट रहते हुए बंद हुए. सेंसेक्स 80,050 और निफ्टी 24,302 पर पहुंचा. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड ने कहा, सेंसेक्स का 80,000 अंक का आंकड़ा पार करना हर्ष का विषय. और सेबी ने परिपत्र जारी कर शेयर दलालों को प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी या बाजार दुरुपयोग की रोकथाम तथा पता लगाने के उद्देश्य से एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बताई. शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की. भारतीय घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज करीब करीब सपाट रहते हुए सकारात्मक रूप से बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 63 अंक यानी कि 0.08% की बढ़त के साथ 80,050 अंक पर जाकर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16 अंक यानी कि 0.06% ऊपर आकर 24,302 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज 234 कंपनियों ने 52 सप्ताह का सर्वोच्च स्तर हासिल किया. वहीं 8 कंपनियां एक साल के सबसे निचले स्तर पर रहीं. बीएससी के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 0.06% की बढ़त देखी गई जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.62 की वृद्धि हुई.
India's equity benchmark indices, Sensex Nifty ended flat with a positive buying today. Sensex inched up by 63 points, 0.08% to close at 80,050. Nifty had a slim gain of 16 points, 0.06% to settle at 24,302. In the NSE, 234 companies hit their 52-week high, 8 hit their 52-week low. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index was up by 0.6%, while the small-cap index rose by 0.62%. 13 out of 30 companies registered gains in the Sensex. The top three gainers today were HCL Tech, which went up by 2.69%, ICICI Bank up by 2.54%, and Tata Motors was up by 2.4%. Conversely, the three major laggards were HDFC Bank, which fell by 2.36%, Bajaj Finance 1.97%, and Larsen & Toubro, which fell by 1.12%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 out of 20 sectors logged gains. The top three gainers were healthcare, which went up by 1.17%, information technology, which went up 1.12%, and tech was up by 0.98%. Conversely, FMCG was down by 0.15%, financial services by 0.13%, and consumer durables by 0.22% with the three major laggards. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,021 companies, the shares of 2,185 companies advanced, 1,742 declined, and 94 remained unchanged.
और रुपए की बात करें तो विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे नीचे आकर 83.50 रूपये के स्तर पर बंद हुआ. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.18% की गिरावट के साथ 105.21 पर कारोबार कर रहा था. अमन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है. और सेंसेक्स की हम बात करें तो बहुत ही कम समय में 80,000 का सफर हमने तय कर लिया. 70,000 से 80,000 पहुंचने में सिर्फ 138 कारोबारी सत्र ही लगे हैं. तो ये जो 10,000 अंकों की बढ़त हमने हासिल की है, इसके पीछे किन कारणों को आप मानते हैं?
देखिए जी, मेरे विचार में एक जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सरकार वापस आई है और बहुमत जोड़ के इस सरकार को बना रही है, तीसरा शक्त है उनका बनाने का, तो उसको देखते हुए जो प्रोग्राम्स वो करती आ रही थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है एजेंसीज है उनके अंदर उसमें कॉन्फिडेंस आया है। दूसरा, जो रिफॉर्म्स के स्ट्रक्चर्स, वो चाहे पोर्टफोलियो हो, चाहे स्टॉक मार्केट्स हो, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, और भी एक्टिविटीज, ट्रेड की एक्टिविटीज हो, उसमें वो ला रही थी पिछले 4-5 सालों से, उसके अंदर आगे तरह स्टेप्स की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और एक कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जहां मैं निवेश कर रहा हूं पैसा, वो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अगर हम देखें तो जो देशों की हालत है, जहां पे इन्फ्लेशन 6%, 7%, 8%, कहीं कहीं 10-10, 12-12% है, हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसको कंट्रोल करके 4.5-5% के आसपास रखा हुआ है और वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। इस वजह से और फिस्कल स्पेंडिंग भी जा नहीं की कोरोना के बाद से, तो हिंदुस्तान की स्थिति ट्रेड में, बिजनेस में बहुत अच्छी रही है। तो इसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो निवेशक है उनका रुझाव जो हो रहा है हिंदुस्तान के प्रति वो ज्यादा हो रहा है, जबकि अपनी उनकी इकोनॉमीज के अंदर वो रुझाव बहुत कम हो गया है। तो इसलिए हमें ये बढ़ोतरी देखने को मिल पा रही है।
अभी ठीक एक महीने पहले 70,374 के लेवल पर पहुंच गया था सेंसेक्स, टूट करके लगभग 1700 अंक शुरुआत में टूटा था जब बैंकिंग मतलब जो कारोबार शुरू हुआ था, उसके बाद फिर अचानक से ऐसी बढ़त पकड़ी कि एक महीने में भी, आज हम देख रहे हैं कि एक महीना पूरा हुआ और आज से एक महीने पहले 70,000, आज फिर 80,000।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उस समय दो तीन चीजें हुई थी अगर आपको याद हो तो, एक फिनटेक कंपनी थी जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंटीग्रेटेड सिस्टम, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ, जहां पे लोग, एक आम आदमी ट्रांजैक्शन करता था उसके ऊपर काफी कड़ी कार्रवाई की जा रही थी, उसे काफी सारे चीजों को रोक लगाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, बाकी बैंकिंग प्रणाली के द्वारा, तो इस वजह से उसमें एकदम से झटका आया हुआ था। दूसरा, जैसे मैंने बताया, इलेक्शंस की अटकलें लगी हुई थी कि कौन आने की उम्मीद है, कौन आने की उम्मीद नहीं है, तो जो प्रोग्राम्स रोल हुए हैं वो चलेंगे या उसमें कुछ रुकावट आ सकती है, तो वो चीजें, उस वजह से काफी थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिली थी। बट अदरवाइज चाहे हम कोई फंडामेंटल लेके चलें, चाहे हम जीडीपी ग्रोथ की प्रोपोर्शन देखें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखें, चाहे हम स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को देखें, चाहे हम ईवी के फ्रेमवर्क को देखें, चाहे हम हेल्थ केयर के फ्रेमवर्क को देखें, सब में पिछले 4-5 साल में बढ़ोतरी आती आ रही है, चाहे वो बाहर वाला निवेश कर ला रहा हो, चाहे वो डोमेस्टिक जो हिन्दुस्तान का अपना निवेश करो वो निवेश कर रहा हो, तो मेरे विचार में कहीं भी गिरावट नहीं है और वो स्ट्रेंथन जो है इकोनॉमी को हिंदुस्तान की करता है।
लुकिंग एट द मार्केट टुडे अमन, द डीआईआईज वर द नेट सेलर्स, सरप्राइजिंगली देयर बीन द नेट बायर्स इन द मार्केट, एफआईआईज वर द नेट बायर्स इन द मार्केट विथ 2,576 crore rupees, एंड इज दैट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स व्हिच आर रोलिंग आउट नाउ फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर? And what's your take on that? Fundamentally, companies are posting good results, which is why they are once again back in the market, or is it too early to say?
No, I think the company's results or the economy results is too early a prediction to make as of now. I think we need to wait for the budget to roll out, and then we will have more concrete results in the market representation or the feel of the people coming in there. And that's why the domestic, is not so high, but the foreign is more. The other components which are critical in the market, and specifically in portfolio engagement, is the fact that the largest strong economies around the world are not performing well. The US dollar is strengthening for sure, but it is at a huge cost to the US economy. You see, the interest rate gap which is there between the inflation and the real interest rates there is tremendously high, which has never been seen by the US economy, and the Fed has no idea as to how to go about controlling it. This is not only the case with United States, it's the case with the UK as well, it's with large number of European countries, it's large number of developed countries in the Asia region as well, including Japan. So that's where some of these major markets like the London Stock Exchange, New York Stock Exchange, or you talk of Nikkei, they have not been able to perform that well, and people, investors are moving to markets where they are able to invest and take advantage of the growth momentum which is already there. And that's where you see the FIIs actually coming in more actively into the markets like India to perform and make money as well as take the market up.
So since you mentioned the US dollar index, the US currency is strengthening, and despite the strengthening of the US dollar, the gold has also gone up. But just coming back to the domestic market, we saw a rally in the IT index, and usually you have companies which are the bellwether stocks, like Infosys or TCS, you know, who really set the tone for how the market is going to behave, especially with their quarterly results. Nifty IT index went up by 411 points today. So what's your take? How do you see IT companies performing at a fundamental level? Because their earnings are in foreign exchange, in US dollars.
Correct. So, you know, that direct link is there when the US dollar strengthens, since their earnings are in dollars. When they convert that to rupees, you get more return at the, to your investment, which is there. But you see, the IT sector per se has not been blooming so much unless it is integrated with other components like the banking, like the fintech-based structure, like the healthcare, when you talk of robotics-based operations and structure like that. Similarly, EV-based frameworks, where you're integrating the EV system with the IT framework. So that's where the IT components are tremendously shooting up, because that's where the potential is in the long run, at least in the next 10 years, to go. And there, the focus of the government is also there in terms of promoting and, you know, projecting that we want to do those kind of activities. And there's a lot of support system which is there. Pure IT as a framework has not been bubbling up so much. Artificial intelligence-based, data mining-based frameworks are certainly coming up. But that's still at a very nascent stage compared to what we see in the UK or in the US in the similar capacity with compared to India.
अमन, अगर बैंकिंग क्षेत्र की हम बात करते हैं तो जो 70,000 से 80,000 का आंकड़ा हमने पाया, इसमें बैंकिंग क्षेत्र की एक बहुत ही बड़ी मजबूती देखी गई है। हालांकि कुछ समय पहले तक बैंकिंग क्षेत्र को लगातार निशाने पर लिया जा रहा था कि ये ठीक नहीं है, भारत में इसका काफी नुकसान हो सकता, तमाम बातें निगेटिव बातें होती रही, लेकिन मजबूती जो हम देख रहे हैं तो बैंकिंग क्षेत्र उसमें उभर कर सामने आता है। और खासतौर पे घरेलू जो बैंकिंग हमारी जो छोटे मोटे लोग निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूती आई है।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जी, पहले कैश क्रंच होता था बैंकिंग इंडस्ट्री में जी। और एक समय था जब सरकार को भी फाइनेंस करने के लिए बैंक्स को पैसा देना पड़ा। आज से 4-5 साल पहले भी बात हुआ, 10 साल पहले भी हुआ। ऐसे अलग अलग समय पे बैंकों को रिकैपिटलाइज, जिसे हम कहते हैं दोबारा पैसा निवेश किया जाता है, वो किया गया। अभी हमने रिसेंटली देखा HDFC केस में भी उनका मेरा मेजर मर्जर हुआ एक उनकी अपनी विंग के साथ, जो फाइनेंसिंग कंपनी थी। तो ऐसा नहीं है कि बैंकों के को जो है सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, पर RBI ने इस रेगुलेशन के फ्रेमवर्क में ऐसा रेगुलेट किया है कि एक आम निवेशकर, चाहे वो जो है डिपॉजिट कर रहा हो, चाहे वो निवेश कर रहा हो उनके सस्ते चीजों को यूज करके, उसको कोई नुकसान ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको इतना स्ट्रेंथन किया गया कि जो NPAs जो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे आज से 10-15 साल पहले, 2014 से पहले की बात जाए देखें, वो काफी हद तक कंट्रोल हो गए हैं, और कम नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं, कंट्रोल हो गए हैं। तो वो जो कंट्रोल फैक्टर है वो एक पॉजिटिव वेव दे रहा है मार्केट को। और दूसरी तीसरी चीज ये है कि डीमोनेटाइजेशन की जो दो वेव्स हमने देखी, उसकी वजह से काफी हद तक काफी लोगों का, इवन एक आम आदमी का पैसे जो है छोटे स्तर पे है, वो भी इस समय बैंक में लगा हुआ है। तो उसको जो बैंकिंग प्रणाली का सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, कैसे काम करता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए वो रुझान बैंकिंग सेक्टर की तरफ अब बढ़ता नजर आ रहा है, जो पहले हमें 10 साल पहले तक देखने को नहीं मिलता।
इसमें एक चीज और जोड़ना मैं चाहूंगा, जो छोटी कंपनियां हैं लोग उनमें भी अब ज्यादा खुल करके पैसे लगा रहे हैं, जबकि पहले ये होता था कि लोग कंपनी का नाम देखते थे, उसकी वैल्यूएशन देखते थे, उसके बाद पैसा लगाते थे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स शुरू की हैं उनसे प्रभावित हुए लोगों ने निवेश करना शुरू किया, छोटी कंपनियों ने आगे बढ़ना शुरू किया,
और कोविड का भी बड़ा योगदान रहा स्टॉक मार्केट की तरफ। काफी सारे निवेशकर जो हमें देखने को मिल रहे हैं आज भी, और आज से पिछले 3 साल में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और भी मार्केट्स में देखने को जो मिल रहे हैं, वो कोविड की देन रहे हैं। क्योंकि पिछले 2-3 महीने हिंदुस्तान में बंद रहा 2020 के अंदर, बाकी देशों में भी 1-1.5-2 महीने रहे बंद। तो जो बिजनेसमैन थे, छोटे निवेशकर थे, दुकानदार थे, अब वो टाइम अपना कैसे काटते, तो उन्होंने सोचा कि हम चला के देखें कि कुछ होता है, और उनको उसमें मजा आने लगा और चलाने लगे। तो काफी सारे निवेशकर, अगर हम देखें जो इन्वेस्टर्स का बेस है, वो काफी हद कोविड के बाद से बढ़ता हुआ नजर आया है, और अब यंग बच्चे भी उसके अंदर काफी हद तक तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं।
स्पीकिंग अबाउट द निफ्टी बैंक, इट वेंट अप ओनली बाय 15 पॉइंट्स इन टुडेज ट्रेड। वी हैड द एग्जांपल ऑफ HDFC, दे हैव डिक्लेयर्ड द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, नो सरप्राइजेस, लोन बुक हैज एक्चुअली गॉन अप, देयर नेट इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो gone up, the NPS come down. It's a private bank which has done very well post the merger. But do you think that Bank Nifty right now is overvalued in terms of its price to earnings ratio? We know that the mid cap index, for instance, has a PE of 40. Large caps and small caps are where the opportunities are because it's roughly 20 to 30 right now. But do you think banking stocks, because of the promise they have shown and the policy of the government to ensure that, you know, they're not heavily leveraged, they're overvalued?
You see, I would not say all of them are overvalued. Certainly, some of these have become overvalued, and specifically with HDFC case which you raised is primarily because of the merger which they've gone into. So they are both cash-rich organizations.
And it fell today. The stock actually fell after the first quarter.
You see, going up and going down happens on a day-to-day basis with the kind of information which comes into the market. But overall, their base has increased, their activities have been merged together, so their overall operations costs have come down. Secondly, HDFC, in terms of functionality, instead of a private bank, it functions more like a government bank. If you really look at the kind of interest payouts they give out on the FDRs or other things, even the loan rates which are there, which are very high as compared to the others. So it's non-competitive, and so their risk appetite is very small. So the risk taking which they are doing is very less. So they are fairly safe enough, like a government bank which is doing. But overall, yes, as of today, the banking share overall would be on a higher end. But the Indian banking system has much more potential, and it is not being correctly utilized. Neither is the funds which are there lying with the banks properly allocated. Companies, businesses, agriculture, when you talk of any industry, they require a large number of funds if you are really looking at the dream of the government of taking it to a very high level, you know, wanting to make an economy from $5 trillion or $7 trillion or $10 trillion economy. The banking sector will have to gear itself in terms of giving out funds to people who really need, in terms of assessing them and giving it out, which is still not happening. Same companies given the loan again is happening easily. New startups not getting the loan. Evaluations taking long time. The only loan segments which are growing up is automobile loan, housing loan, where they are actually secure. Because suppose a house is valued at 1 crore, they are only giving a loan of 30, 40, 50, 60 lakhs.
It's mortgage and hypothecated.
So their risk is very low because they are actually 2 times or 2.5 times they are saved. So they are not taking any risk. In a business where they're giving a loan, the risk is real risk, where you're giving a loan to a business of 400 crores, whereas the risk is almost to the tune of you may get only about 100 crores if it fails. So that's where the difference in terms of giving out. But the real momentum to an economy or a structure comes when a business given loan, because that generates employment, that generates product creation, that reduces the cost of products in the market. Housing and automobile does not do that. And so, as a result, we are seeing the boom bust there, but it is not realistic in nature till whether it is public banks or private banks come and give out loan, like we have seen a boom bust in terms of loan giving in 1980s and 90s in the US and other parts of the world, wherein anyone who wanted a loan could go. If he had a job, he could get a loan. Today, only if you have a government job, you can get a loan. If you have a private job, not necessarily that you'll get a loan. And that is where the system has to change if you really want it to go up.
And Shwetha, आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2023 से 3 जुलाई 2024 तक भारत का निफ्टी दुनिया के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक इंडेक्स में शामिल रहा है और 3 जुलाई को जो हमने इसमें हासिल किया लगभग तब तक 3084 अंकों की बढ़त हो चुकी थी जो कि 16% से ज्यादा की बढ़त को दर्शाता है और इसमें भी जो कंपनियों के शेयर्स लगे हुए हैं उनका मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. यह दर्शाता है कि हमारा जो निफ्टी भी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है और लगातार लोगों को फायदा भी पहुंचा रहा है.
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. इस समय हमारी मार्केट्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. इनफैक्ट एक स्टेज था, आज से 8-10 साल पहले हम बात कर रहे थे कि हम इसको इंटरनेशनलाइज कैसे करें. वो हम कोशिश कर सकते हैं अब अगर ये स्टेबल होती हैं इस लेवल पे तो.
Well, let's now move on to our second headline story. Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, today advised the market regulator, SEBI, and the Securities Appellate Tribunal to exercise caution considering the significant surge in equity markets and pitch for more tribunal benches so that the backbone is stable. Inaugurating the new SAT premises today, the Chief Justice of India urged authorities to consider opening up new benches of SAT given the higher workload caused by higher quantum transactions and newer regulations, calling the passage of 80,000 points by the BSE as an ecstatic moment. The Chief Justice of India said, "The more you see the surge in the stock market, the greater the role I believe for SEBI and SAT as institutions which will exercise caution, celebrate the successes, but at the same time ensure that the backbone is stable." How important is a statement by the Honorable Chief Justice of India? You mentioned about companies, you know, which require finance and leverage also. They borrow from the market in the form of bonds, or they are able to issue more stock in the form of IPO and FPO. That's the process they go through. But then it does create some legal problems. What's your take on it?
No, I think it's a very important decision in the framework which is there. And he's very right. And I think he technically mentioned of a very important component of increasing the number of benches which are there, because justice delayed is justice denied, as they say. And, you know, most developing countries, including India, suffers from this particular lacuna of justice getting delayed to a great extent, which actually dilutes the functioning of the judiciary. So in my opinion, this is a very important decision, given the light of the fact that there are international agencies also trying to bring out and disnormer the market norms in a country like India, which they have done in other countries as well. And there are not one but multiple of such nature of organizations which function. It is important that SEBI creates a more proactive role, not only to take those signals as an important message to check on what is happening at the home, but also to safeguard the investor for any kind of a major shock which may come in, either because of those reports or because of the Indian domestic companies' performances.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने आज एक परिपत्र जारी कर शेयर दलालों को प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए धोखाधड़ी या फिर बाजार दुरुपयोग की रोकथाम तथा पता लगाने के उद्देश्य से एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बताई है। इस परिपत्र के माध्यम से अन्य दायित्वों के अलावा व्यापारिक गतिविधियों और आंतरिक नियंत्रणों की निगरानी के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन, एक व्हिसल ब्लोअर नीति की शुरूआत को अनिवार्य किया गया है। ये आवश्यकताएं सेबी स्टॉक ब्रोकर संशोधन विनिमय 2024 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बाजार की शुद्धता और निवेशक सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना है। नियामक ने परिपत्र में यह भी कहा है कि परिचालन के तौर तरीकों सहित कार्यान्वयन के मानक सेबी के परामर्श से ब्रोकर के उद्योग मानक फोरम यानी कि आईएसएफ द्वारा तैयार किए जाएंगे, और इसके अनुसार स्टॉक ब्रोकरों का आकार कार्यान्वयन निर्धारित करेगा। 50,000 से अधिक सक्रिय यूनिक क्लाइंट कोड यूसीसी वाले ब्रोकरों को 1 जनवरी 2025 तक इसका अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अलावा योग्य स्टॉक ब्रोकरों को शासन और ग्राहक व्यवहार निगरानी के लिए अपने मौजूदा दायित्वों को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त 2024 तक इन आवश्यकताओं का पालन करना होगा। अमन जी, ये जो एक नया फ्रेमवर्क तैयार करने की बात की जा रही है, वाकई ये ग्राहकों के लिहाज से बहुत ही अच्छा एक स्टेप है और काफी हद तक इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी।
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और चीफ जस्टिस ने भी कहा वो भी इसी डायरेक्शन में था, तो मेरे विचार में एक यूनिक जो सिविल कोड है इनका, जो क्लाइंट कोड है, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज सिस्टम्स चेंज होते जा रहे हैं। कहां हम एक चीज को एक हफ्ते में, दो हफ्ते में सेटल करते थे, फिर हम उसे तीन दिन पे आए, फिर हम एक दो दिन पे आए, अब हम बात कर रहे हैं सेम डे सेटलमेंट कि उसी दिन ट्रांसफर भी हो जाएगा। जब हम इतनी स्विफ्टनेस लेके आ रहे हैं तो एक पारदर्शिता भी लानी जरूरी है, और इन्वेस्टर को कि वो चीट ना हो जाए, बिकॉज छोटे छोटे निवेशकर की ज्यादा चिंता है। बड़े निवेशकर तो अपने स्टेप्स ले लेते हैं, ध्यान भी रख लेते हैं, बट छोटे निवेशकर, आप या मेरे जैसे निवेशकर, नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको देखने के लिए जरूरी है।
और अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। एशिया के अधिकतर शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया। केवल चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.83% की सुस्ती के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.09% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.81% के उछाल में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.71% के लाभ में था। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 0.28% की तेजी देखी गई। यूरोप के प्रमुख बाजार आज ज्यादातर हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे थे। फ्रांस का कैक और लंदन का फुटसी 100 0.69% लाभ में थे। वहीं समाचार लिखे जाने तक जर्मनी का डेक्स 0.29% के फायदे में चल रहे थे। अमन जी, चाइना की मार्केट की अगर हम बात करें तो चाइना का मार्केट बहुत ज्यादा कुछ इस तरह का दिखा नहीं रहा है, अपना रिजल्ट जो चौंकाने वाला हो, बड़ा धीमे धीमे ग्रो कर रहा है। रहे हैं?
देखिए, चाइना की जो मार्केट है उसमें दो टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं
जी।
एक होते हैं ए क्लास और एक बी क्लास। जो ए क्लास शेयर्स हैं उसमें सिर्फ सरकार और सरकारी के लोग ही उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मेजर सेगमेंट है। जो बी क्लास शेयर्स हैं वो भी वहीं की कंपनियां हैं, ये क्लियर नहीं है कि वो प्राइवेट रन है या सरकारी रन है या गवर्नमेंट रन है डिफेंस रन है। उसमें लोगों को निवेश करने का अनुमान होता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी उसमें निवेश किया जा सकता है, पर वो निवेश जो फंड है बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बड़ी कंट्रोल मार्केट है, इसलिए उसमें आपको ज्यादा देखने को कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसी नहीं है कि हांगकांग शंघाई जैसी एक्सचेंज हो या निकी जैसी हो या जहां पे पारदर्शिता भी है, और जब तक ज्यादातर इन्वेस्टर जो लिस्ट कर रहे हैं और जो ट्रेड कर रहे हैं ज्यादा नहीं होंगे तब तक हमें ये ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल पाती है।
Well, let's have a look at the U.S. market now. The U.S. stock market, two out of the three major indices ended in the green yesterday. The S&P 500 and Nasdaq closed at fresh records yesterday, continuing their positive streak despite mixed economic signals. Ahead of the holiday, trading volumes were extremely low. The Dow Jones Industrial Average was down by 0.06%, Nasdaq increased at 0.88%, while S&P 500 gained 0.51%. Nasdaq going up, the artificial intelligence infrastructure, that's been the flavor as far as the US market is concerned. How do you see the Indian market mimicking that right now, especially with the presidential election and the budget which is going to be announced?
No, I do not see anything with artificial intelligence and big data coming into India as of now. There are big talks about it. There is no concrete result which is visible. Whether it is a question of defense or healthcare or, you talk of manufacturing or banking, there is hardly any artificial intelligence and big data management which is happening. Every one of them gimmicks it, presents it, but is not really happening.
But NVIDIA has been going up in valuation.
Yes, certainly, because that is something which is the in thing. So that's where I said that the companies which are talking about it will be a big thing. But what we are seeing in real practicality today is very small. It's like the tip of the iceberg of what really the iceberg is. In the US, they are already implementing AI and big data for last 10 years or so. So it's not something where we can compare these two markets when it comes to investment. Like in case of EV today, we are extensively investing. We are almost at the world level in terms of investing in terms of EV frameworks. We are not there in the AI and big data space as of now.
Well, let's have a look at the crude oil market now. Oil prices edged lower today, retreating from the previous session's multi-month highs. Brent crude was down by 0.56% to $86.85 per barrel. U.S. West Texas Intermediate crude was down 0.67% to $83.32 per barrel when reports last came in. Your take on the oil market right now, especially with the Saudi Aramco being a chief producer in the OPEC space, how do you see oil prices right now, especially with India and China being a major consumer and the SPRs of the US?
You see, there are two components to the oil prices. One is the OPEC playing its game. The OPEC view in the last 3 months is very clear. They want to cut down production. They want to increase the price, primarily because these oil producing countries have overhedged based on that $200 price range which they were looking at when it had started pushing up to $130, $140, $150 a barrel. And that's where they had actually taken extensive loans to build up their infrastructure and other things, thinking that they will be able to encash it, which they did not because it crashed. The second component is most countries, including India, actually have a pegged price when they have to buy oil for their regular consumption. It's only a small component which they buy from the burnt and the other exchanges like this. So that's why that price is hovering around $60-$65 a barrel, which does not change overnight.
और श्रोताओं आपको बता दें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का वायदा मूल्य अगस्त 2024 के लिए 0.02% की तेजी के साथ 72,420 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं जुलाई 2024 के अनुबंध के लिए चांदी अंतिम समाचार मिलने तक 0.07% की गिरावट के साथ 89,835 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिन के कारोबार के दौरान सोना 0.08% की सुस्ती के साथ $2,367.50 प्रति औंस के स्तर पर था और अंतिम जानकारी प्राप्त होने तक चांदी 0.64% नीचे आकर $30.65 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अमन जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। Namaskar. Thank you. Dhanyavaad.
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock indices end flat. Sensex closes at 80,050. Nifty settled at 24,302. Sensex crossing the 80,000 points is an ecstatic moment, says Chief Justice of India, D.Y. Chandrachur. And stockbrokers to establish institutional mechanism for prevention and detection of fraud or market abuse, directs SEBI circular. And that's it in this edition of Market Mantra for now.
Namaskar.
Goodbye. Namaskar. Market Mantra.